या कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो, हो कबूल कर लो।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ व्हाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान, 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। khairimsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियात मौजूद है।
Grill in the Hut, Mrs. Saga में order via phone, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। Grill in the Hut।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड, मिसिसागा।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगु, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, ब्रैम्पटन के बाद ग्रिल एंड चिक की दूसरी लोकेशन खुल चुकी है आपके शहर मिसिसागा में, 3525 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 105, मिसिसागा। डिलिशियस एंड हेल्थी ग्रिल एंड रोटिसरी चिकन सैंडविचेस, बर्गर्स, विंग्स, स्क्यूअर्स, पॉपकॉर्न चिकन, सैलेड, गार्लिक ब्रेड एंड स्वीट डिशेस। ग्रिल एंड चिक मिसिसागा, 9056062345। विजिट एट grillandchick.com।
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसे कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से रابطہ कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट के लिए वकार अजीम, 4163022522, 302-2522।
जी साहब नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 5:03 और 18 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। स्टिल 22 डिग्रीज टेम्परेचर के साथ हम शाम गुजार रहे हैं अपनी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट जनाब फयाज वलाना साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे कुछ पाकिस्तान के हालात हाजरा पर और कुछ कैनेडा के हालात हाजरा पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं फयाज वलाना साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपको भी और आपके तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। और शुरुआत करते हैं हम कनाडा के हालात से। और कनाडा के जो हॉट टॉपिक है आजकल वो कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में बढ़ती हुई तल्खी, क्या समझते हैं आपके ये तल्खी किस रुख पहुंचेगी?
ये कनाडा और अपना इंडिया की जो तल्खी है ये असल में बात कोई ऐसे शुरू हुई थी कि जब G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त इन्होंने कोई सलूक हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छा नहीं रखा था और खिंचे खिंचे थे, तनाव था, लोगों को समझ नहीं आया कि ये तनाव किस वजह से था। लेकिन जब वापस आए जस्टिन ट्रूडो और यहाँ आके उन्होंने पार्लियामेंट में जब अपनी स्टेटमेंट दी हरदीप सिंह नजर के हवाले से, तो फिर पता चला कि हाँ तलखी और ये खिंचाव क्यों था दो ममालिक के लीडरान के दरमियान। और उसकी वजह वही थी कि जिस तरह इंडिया पहले तो इधर उधर मुदाखलत पाकिस्तान में इतने अरसे से कर रहा था, अफगानिस्तान में उसकी मुदाखलत जारी है, हत्ता कि ईरान को भी उन्होंने नहीं बख्शा। बज़ाहिर इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसी अच्छे ताल्लुकात की आड़ में उन्होंने चाबहार में कुलभूषण यादव जैसे अपने एजेंट वहां बिठा के और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कराई। और कुलभूषण यादव जो इस वक्त पाकिस्तान की हिरासत में है, उसने तस्लीम किया कि हाँ मैंने कराची में और बलूचिस्तान में मैंने बम धमाके कराए हैं और मैं मुबारक हुसैन के नाम से एक पासपोर्ट बनवा के मैंने रखा हुआ था और मैं उस नाम से एक मुसलमान के एक ईरानी मुसलमान के ताजर के रूप में पाकिस्तान में घूम फिर रहा था और वहां इस तरह की कार्रवाइयां करवा रहा था, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां। तो ये कुलभूषण यादव एक एग्जाम्पल थी। और जब हम पाकिस्तान बात करता था तो उस वक्त दुनिया नहीं मानती थी, लेकिन अब जब जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जबान से और कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर की जबान से जब पूरी दुनिया को पता चला, और अब अमरीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बरतानिया ने, न्यूजीलैंड ने, ये सारे कंट्रीज जब कैनेडा की आवाज़ में हम आवाज़ हुए हैं, तो अब दुनिया को पता चला है। और इस वक्त यूनाइटेड नेशन में जो इजलास चल रहा है वहां भी इस वक्त पूरी सारी दुनिया की अटेंशन इस कैनेडियन इंडियन इशू पे है। और पूरी जो इंडिया के दोस्त हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक बड़ा बिजनेस पार्टनर होने की वजह से इंडिया के हमायती भी पूरी दुनिया में हर जगह से सर उठा लेते हैं, तो इस वक्त जितने इंडिया के हमायती हैं वो इस फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने और कैनेडा ने जो बात उठाई है इस बात को दबाया जाए। और फिर आपको पता है न्यूयॉर्क में सिख फॉर जस्टिस जो तंजीम है इनकी, जो रिफरेंडम करा रही है पूरी दुनिया में सिखों की, वो बहुत एक्टिव हैं। उसके जो चीफ हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो वहां से करते हैं, ऑपरेट करते हैं न्यूयॉर्क सिटी से। और फिर जो खालिस्तान काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो वाशिंगटन डीसी में भी उनका ऑफिस है, न्यूयॉर्क में भी है, डॉक्टर बख्शीश सिंह संधू, वो एक्टिव हैं। तो इस वक्त वहां यूनाइटेड नेशन में अंदर यूनाइटेड नेशन का इजलास हो रहा है और बाहर सिखों की और कश्मीरियों के मुजाहरे हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया देखने पे और उस तरफ मुतवज्जो होने पे मजबूर है कि ये हो क्या रहा है। ये इंडिया जो अब अपने आप को इंडिया भी नहीं कहना चाहता, वो हिंदुस्तान और भारत का नाम लेना चाहते हैं, और ऑफिशियली इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जी हमें इंडिया का वर्ड ही हमने नहीं यूज करना। वो पूरा सिनेरियो चेंज कर रहा है, उसका परसेप्शन चेंज कर रहा है नरेंद्र मोदी। वो पूरी आरएसएस जो उनकी एक शिद्दत पसंद सोच है, उस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए इंतहाई एक्टिव हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है और समझने वाली सोचने वाली बात यह है कि अभी जब इस पे बहुत ज्यादा ले दे हो रही थी, तो इंडियन ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली ये कहा है कि हम कनाडा को एक एग्जाम्पल बनाएंगे, हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि आइंदा कोई पाकिस्तान इंडिया की तरफ इस तरह ना देखे, ना इस तरह इंडिया पे सरेआम कोई इल्जाम लगाए कि आप हमारी मुल्क में आके दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और कोई हमें इस तरह ना कहे कि आप ये करते हैं। हालांकि जो कुछ हुआ उसके साथ हमारे हरदीप सिंह नजर के साथ, पूरी दुनिया को मालूम है कि उसके सर पे कीमत अगर इंडिया ने लगाई हुई थी तो किसी वजह से लगाई हुई थी, क्यों लगाई हुई थी। और उसकी क्लियर कट उसे आरसीएमपी ने, जो हमारी कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, एक वर्ल्ड रिनोन टॉप क्वालिटी एक इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उन्होंने वॉर्न किया हुआ था हरदीप सिंह नजर को और उसे कहा था तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। और उसने साफ बताया हुआ था कि मुझे खतरा सिर्फ इंडिया से है और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी राह से है, और किसी से मुझे कोई खतरा नहीं है। और बिल आखिर जो क्रेडिबल, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंसेज हैं कि रॉ मुलव्वस है और इंडियन गवर्नमेंट मुलव्वस है और इंडियन स्टेट ने यहां आके टेररिज्म किया है और हमारे बंदे को जान से मार दिया है और बाकी लोगों की जान खतरे में है। और इससे पहले आपको पता है एक लाहौर में कोई खालिस्तान तहरीक के कोई बंदे थे, कोई सिख भाई थे, उनको कत्ल कर दिया गया। फिर यूके में एक बंदे को कत्ल कर दिया गया और अब ये तीसरा मर्डर, आप सुना है कि एक और चौथा वाकया हो गया है। तो ये अफसोसनाक है सारी सूरत हाल। लेकिन अब इस मौके पे जिम्मेदारी हमारी कैनेडियन गवर्नमेंट की और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जस्टिन ट्रूडो की भी बढ़ गई है, क्योंकि सारी दुनिया जब इस तरफ मुतवज्जो हो गई है तो अब इन्हें वो जो क्रेडिबल एविडेंसेस की बात करते हैं उन्हें वाकई प्रूव करना पड़ेगा कि ये इंडिया जो वावेला मचा रहा है, ये वैसे तो जयशंकर ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हमारी तरफ कहा था, लेकिन ये एक्चुअली चोर भी वही है और डांट वो कोतवाल को रहे हैं। कोतवाल कैनेडा है जिसने इस मामले को उठाया है और कहा है कि हमें इसमें हमने तहकीकात हम आखिरी मरहले तक पहुंचा के लेके जाएंगे, हतमी उस नतीजे तक लेके जाएंगे और जो भी कसूरवार होंगे उनको सजा दी जाएगी। लेकिन हम पे उल्टा इल्जाम लगा दिया उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी। अब इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है कि इंडिया ने अपने सिटीजन के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया है कि کینیڈا محفوظ ملک نہیں ہے. اگر آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا کینیڈا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو بی کیئرفل. اب اس سے بڑا اور مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کینیڈین ہائی کمیشن جو ہے نیو دہلی میں, وہاں ویزا کے اصول کے لیے جو لائنیں لگی ہوئی ہیں انڈینز کی, آپ ان کو روک لیں, آپ آنے ہی نہ دیں کینیڈا اگر نہیں آنا چاہتے. اور ابھی لیٹسٹ ہمارے جو اسٹیٹس ہیں, اس وقت بھی 770,000 کینیڈین انڈین نژاد شہری سکھ ہیں جو وہ یہاں کینیڈا میں رہ رہے ہیں, اور ان کی پرسنٹیج سب جتنی پرسنٹ سکھوں کی آبادی انڈیا میں ہے اتنی پرسنٹ ہی, آلموسٹ 4-5% یہاں بھی وہ پہنچ گئے ہیں. اور ابھی ہمارے جو لیٹسٹ سٹیٹس تھے, اس وقت سٹیٹس ہمارے پاس آئے ہیں جنوری سے لے کر اس سال جنوری سے جون تک کے, اور اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو یہاں امیگرنٹس آئے ہیں انڈیا سے اور باقی دنیا سے, تو جنوری سے لے کر جون تک 6 مہینے میں جتنے امیگرینٹس پی آر کارڈ ہولڈر کینیڈا آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ انڈیا سے آئے ہیں 84,425. اب 84,425 لوگ پرماننٹ ریزیڈنس لے کے کینیڈا آئے ہیں صرف 6 مہینے میں انڈیا سے. وہ ملک کہہ رہا ہے کہ کینیڈا غیر محفوظ ہے, اور بھائی غیر محفوظ ہے تو یہ 84,425 پیپل آپ نے 6 مہینے میں یہاں کیوں بھیجے ہیں, اور اگلے 6 مہینے میں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. اب یہ نمبر دیکھنے میں لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ صرف انڈیا کا ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں, نہیں, پروپیگنڈا فیکٹس بتائیں گے کہ یہ پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں. نمبر 2 پہ ہے چائنا. چائنا سے کتنے لوگ آئے ہیں اس 6 مہینے میں کینیڈا کی پی آر لے کے, پرماننٹ ریزیڈنس لے کے, کینیڈین امیگریشن لے کے, 18,760. تیسرے نمبر پہ ہے فلپینز, 14,450. نائجیریا 10,180. افغانستان 7,670. اور یہ وہ ہیں جو اب افغانستان میں حالات خراب تھے تو وہاں سے چارٹرڈ طیاروں کے ذریعے لوگ آئے ہیں, ورنہ اتنے نمبر افغانستان کے نہیں ہوتے. پھر یونائٹڈ اسٹیٹ سے 6,675, پاکستان سے 6,355 لوگ آئے ہیں. یہ وہ کنٹری ہیں, اگر پاکستان سے 6,355 لوگ آئے ہیں 6 مہینے میں, تو انڈیا سے 84,425 پیپل یہاں امیگریشن لے کے آئے ہیں. اور ان کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا غیر محفوظ ہے اور محتاط رہیں. ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے مودی صاحب نے اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا. اور ابھی دسمبر 31st of December 2022 کو انڈیا کے کتنے اسٹوڈینٹس تھے یہاں انٹرنیشنل اسٹوڈینٹ, 3,30,000. اور ابھی اگلے 8 مہینے میں جنوری سے لے کر اگست سپٹمبر تک تقریباً 30,000-40,000 اور آ گئے ہوں گے. اب چاہیے تو یہ کہ کینیڈین گورنمنٹ اسٹاپ لگا دے, جس طرح آج کینیڈین جو آٹوا میں انڈین ہائی کمشنر ہے انہوں نے آج ویزا سروسز بھی بند کر دی ہیں کینیڈینز کے لیے, کہ ہم کینیڈینز کو انڈیا کا ویزا بھی نہیں جاری کرنا چاہتے, انہوں نے فی الحال ویزا سروسز بند کر دی ہیں. اب اگر کینیڈین بھی ویزا سروسز اپنے ریسیپروکلی واپس بند کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہاں سے امیگرنٹس آنا بھی بند ہو جائیں گے, فیملی اسپانسرشپ کے کیسز بھی لٹک جائیں گے, اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آنا بند ہو جائیں گے. تو پھر یہ کینیڈین گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں 3,30,000 اگر اسٹوڈنٹ 31st of December 2022 کو یہاں انڈیا سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو اگلے 31st of December 2023 تک یہ جو تعداد ہے اس کو ہم نے کور کس طرح کرنا ہے. تو پھر اس کے لیے پاکستان, بنگلہ دیش اور باقی ایسے کنٹریز جہاں سے اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے, ان کے لیے ڈور اوپن کرنے پڑیں گے. وہاں ان پہ سیکیورٹی کے نام پہ جو ان کے ویزاز کے غیر ضروری ڈیلیز ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا. اور ہمارا اسپیشلی جو پاکستان کاکس ہے پارلیمنٹ میں, اس کے جو ممبران ہیں اقرا خالد, سلمہ زاہد یا ٹیری ڈوگٹ ہیں, راب اولیفنٹ ہیں, سمیر زبیری ہیں, انہیں تھوڑا سا ایکٹیولی, اور شفقت علی ہیں, انہیں ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا کہ اگر انڈیا کینیڈا اپنے بندے نہیں بھیجنا چاہتا, اور اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ کینیڈا غیر محفوظ ملک ہے, اور اگر وہ ویزا سروسز کینیڈین کے لیے بند کرتے ہیں تو پھر کینیڈا بھی ان کے لیے ویزا سروسز بند کرے گا اور ان کو اس طرح اکوموڈیٹ نہیں کرے گا. تو پھر وہ کنٹریز جن کے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں اور وہ امن پسند شہری ہیں اور وہ کنٹریز بھی امن پسند ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں کینیڈا کے, تو وہاں کے لوگوں کے لیے دروازے کھولنے چاہیے. ایک اور بڑا ایشو ہمارے لوگوں کا, ہماری قوم کو اور کینیڈین لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہم نے, کینیڈا والوں نے جو سٹیٹس بتاتے ہیں کہ $50 ارب کے پینشن فنڈ جو ہیں وہ انڈیا میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں کینیڈا نے, تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو $50 ارب ہم نے کینیڈین کے پینشن فنڈز انڈیا میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا اور اس انویسٹمنٹ کو واپس لانا پڑے گا. اس وقت بھی کینیڈین 300 انویسٹمنٹ کمپنیز, مختلف بزنس کاروباری کمپنیز کینیڈین انڈیا میں انویسٹمنٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کی انویسٹمنٹ بھی خطرے پہ ہے کہ اگر اس طرح نریندر مودی نے کینیڈا کے ساتھ ایگزامپل بنانا ہے اور اگر دنیا کو بتانا ہے کہ کینیڈا نے کیوں وائس ریز کیا ہے اور کینیڈا نے کیوں یہ بات کی ہے کہ انڈیا نے یہاں آ کے بندے مارے ہیں, اور کیوں یہ بتایا ہے کہ جو یہاں ان کا ڈپٹی ہائی کمشنر یا سیکنڈ سینئر موسٹ ڈپلومیٹ تھا آٹوا میں, ان کا نام تھا پون کمار رائے, कि वो रा के अंडर कवर थे और रा के यहाँ हेड थे कनाडा में, और वो इस सारे मुबैना तौर पर इस कत्ल में मुलव्वस हैं, और यहाँ कैनेडियन अगर खालिस्तान वाले हैं या खालिस्तान तहरीक वाले लोग हैं, उन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई हुई, उन्होंने कोई बंदूक नहीं उठाई हुई, और उन्होंने हत्ता के उनके जो पोस्टर थे उस पोस्टर पे एक तरफ AK-47 थी और एक तरफ कलम पेन बना हुआ था। उन्होंने AK-47 पे क्रॉस लगाया हुआ था उन रिफ्रेंडम वाले ग्रुप ने, उन्होंने कहा कि हम ये AK-47 पे क्रॉस लगाते हैं कि हम गन नहीं उठा रहे, हम कलम की बात कर रहे हैं, हम लोगों की राय मालूम कर रहे हैं, हम कलम के जरिए खालिस्तान की तहरीक चला रहे हैं। उस पे कंप्लेंट्स की यहाँ लोगों ने, इंडियन हाई कमीशन वालों ने और उनके जो आगे लोग थे उन्होंने कंप्लेंट्स की और उनके वो सारे पोस्टर उतरवा दिए गए। हालांकि वो पोस्टर चीख चीख कर कह रहा है कि हम टेररिज्म की तरफ नहीं जा रहे, हम मुसल्ला जदोजहद नहीं कर रहे, हम पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं। तो ये सारी दुनिया के सामने ये चीजें आ रही हैं और आने वाले दिनों में शायद मामलात और तल्ख हों, लेकिन हमारे कैनेडियंस लोगों को और स्पेशली साउथ एशियन कैनेडियंस को आंखें और कान खोल के रखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर इंडिया की तरक्की होती है तो क्योंकि हमारा स्किन कलर एक जैसा है, हमारी आउटलुक ऐसी है, तो शायद उसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी निजाद या बांग्लादेश के हमारे भाई बहन वो भी शायद निशाना बने, तो हम सबको बहुत केयरफुल रहना होगा। जी,
दिस सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय क्लक क्लक्स, क्लक क्लक्स हेरो मिसागा टोरंटोस फेवरेट चिकन एंड वाफल्स। भाई चिकन एंड वाफल्स का आप सैंडविच नहीं खाया तो एक दफा आप क्लक क्लक्स पे पहुंच जाइए, 70 वर्ल्ड ड्राइव पे आपको मिलेगा, 401 एंड हेरो ओंटारियो का मेजर इंटरसेक्शन बनता है ये, 70 वर्ल्ड ड्राइव। फोन नंबर नोट कर लें क्लक क्लक्स का, 2895620030। इसके साथ साथ चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल की बात करते चलो, स्मॉल इवेंट हो, लार्ज गैदरिंग हो, वेडिंग सेरेमनी हो, 1200 से 1400 लोगों की सीटिंग है यहां पर, 25 साल का एक्सपीरियंस इनके पास, मॉडर्न डिकोर है, प्रोफेशनल स्टाफ है, पाकिस्तानी इंडियन एंड वेस्ट इंडियन कुजीन, बेस्ट साउंड सिस्टम, 2935 ड्रू रोड मिसेस सागा में वाक़ है, 6479653823 इनका फोन नंबर है। मौलाना साहब, पाकिस्तान का न्यूज़ में बहुत आया कि पाकिस्तान असला यूक्रेन को भेज रहा है या बेच रहा है, क्या ये खबर है या अफवाह है?
अच्छा, दी इंटरसेप्ट डॉट कॉम वाले जो हैं उन्होंने पहली खबर तो साइफर के हवाले से दी थी, उन्होंने साइफर का पूरा वर्ड बाय वर्ड जो वर्बैटम था उसका पूरा लफ्ज़ बलफ्ज़ उन्होंने छाप दिया था, और उन्होंने कहा हम स्टोरी पे कायम हैं, और वो स्टोरी पे कायम इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे चैलेंज नहीं किया था उस स्टोरी को, और ना कोई उन्हें लीगल नोटिस भेजा, ना उस पर कोई बात की और ना कोई रिएक्ट किया, और उसी वजह से दी इंटरसेप्ट डॉट कॉम ने अब दूसरी स्टोरी जो छापी है, क्योंकि उन्हें रोका नहीं गया तो उन्होंने फिर दूसरी स्टोरी छापी, और दूसरी स्टोरी में फिर पाकिस्तान पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को असला भेजा और अमेरिका ने वो असला यूक्रेन भेजा, तो बेसिकली पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली यूक्रेन को असला बेचा, और वहां से उन्होंने तस्वीरें जारी की कि वहां से पाकिस्तानी मिनिशन के जिनके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था वहां गोलियों के खौल मिले। ये बहुत खतरनाक इल्जाम था पाकिस्तान पे, लेकिन अब उसका इंटरव्यू जब जिन जर्नलिस्टों ने किया है, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने या अमेरिकन जर्नलिस्टों ने जो द इंटरसेप्ट डॉट कॉम के एडिटर भी हैं और शायद ऑनर्स वन ऑफ द ऑनर्स में से भी हैं रायन ग्रिम, उनसे उन्होंने जब पूछा तो उस बंदे ने पूरी क्रोनोलॉजिकली बताया कि कब कब क्या हुआ, और वो साबित करते हैं कि अगस्त 22 में असले की प्रोडक्शन बढ़ा दी थी पाकिस्तान ने, और अप्रैल में इमरान खान को निकाला गया, और उससे पहले इनकी बैक एंड पे बात चल रही थी, तो इमरान खान के जाने के फौरन बाद इस डील पर अमल दरामद शुरू हो गया, और वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि ये डील एक्चुअली इमरान खान के नॉलेज में नहीं थी, लेकिन उस वक्त के जो आर्मी चीफ थी कमर जावेद बाजवा शायद वो ये सारा कुछ कर रहे थे, और इमरान खान को हटाया ही इसीलिए गया था क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट के अलावा जो कुछ मामला थे, और फिर डोनाल्ड लू ने जो कहा उस वक्त के हमारे जो एम्बेसडर थे असद मजीद के साथ, तो वो सारी चीज वो कन्फर्म कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं आपको पूरी टाइम लाइन बताता हूँ, उस टाइम लाइन में वो कहते हैं कि इमरान खान के जाने के फौरन बाद वहाँ प्रोडक्शन बढ़ गई पाकिस्तान में, हमारी जो ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं जहाँ बन रहा है असला, और उसके बाद वो असला यहाँ आना शुरू हो गया, और इमरान खान को मुकदमात में उलझा दिया गया ताकि इस मामले पे उसका ध्यान ना हो, वो मुकदमों में ही उलझा रहे क्योंकि उन्हें पता था कि अपोजिशन लीडर्स में से वाहिद इमरान खान ही, या बाकी सारे तो गवर्नमेंट में आ गए थे। तो ये इमरान खान ने पहले भी जब ड्रोन अटैक्स के हवाले से और नेटो को सप्लाई के हवाले से जब रेजिस्ट किया था तो वो रेजिस्टेंस बहुत आगे बढ़ गई थी और अमेरिका के लिए बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने कहा कि इसको तो उलझा के रखो। हालांकि वो भी जानते हैं पाकिस्तान वाले भी और अमेरिका वाले भी कि इमरान खान के खिलाफ अब तक जितने केसेस किए हुए हैं किसी में भी कोई सॉलिड प्रूफ उनके पास नहीं है, अगर उनके पास अब तक कोई प्रूफ होते तो कोई ना कोई सजा सुना के और अगर सुना भी दिया है दिलावर जैसे एक जज ने, तो वो सुनाने के बाद वहां से भाग खड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान में रुक नहीं सके और उसकी अपील पे अभी तक फैसला नहीं हो रहा, एक महीना हो गया है। तो वो कहते हैं जी हमारे पास उस डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गए हैं उस डील के, रायन ग्रिम कहते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि ये डॉक्यूमेंट आपको कहां से मिले, तो उन्होंने कहा ये हमारे उसी सोर्स से मिले जिस सोर्स से हमें पहले साइफर मिला था। और आपको याद होगा कि साइफर जब इन्होंने डिस्क्लोज किया था तो उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान आर्मी से मुतल्लक कोई सोर्स है हमारा, जो पाकिस्तान आर्मी में है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। अब जब उससे मजीद पूछा गया तो उसने कहा कि मैं किसी आपके ऐसे सवाल का जवाब नहीं दूंगा जिससे हमारा सोर्स जो है वो डिस्क्लोज हो जाए, इसलिए मैं उसके करीब करीब भी नहीं जाने दूंगा आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हाजिर सर्विस है पाकिस्तान आर्मी का बंदा या रिटायर्ड है, किस ओहदे का है, सीनियर है या बहुत सीनियर है या मिड सीनियर है, लेकिन वो ये मानते हैं कि वो ऑफिसरान में से है, पाकिस्तान आर्मी का कोई ऑफिसर है जिसने हमें साइफर भी दिया था, पहले पूरी कॉपी उसकी दी थी जो हमारे पास महफूज है, जिसे अभी तक चैलेंज नहीं किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और अब हमारे पास इस डील के भी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने असला बेचा। तो ये एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट स्टोरी है, इस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिएक्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि पाकिस्तान किसी ऐसे मामले में मुलव्वस नहीं है, अगर है तो बताएं कि क्या वजूहात थी, क्या मजबूरियां थी, और क्या ये दुरुस्त है जिस तरह वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान को निकाला ही इसलिए गया था, और अब अगर इमरान खान को वापस नहीं आने दिया जा रहा तो इन्हें खतरा है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि शायद इमरान खान वापस आकर ये सारे मामला दोबारा खोल लेगा, जो एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। जी
फॉरन ऑफिस ने डिनाई किया इसको, ये जो जब सारी खबर आई थी तो फॉरन ऑफिस से पूछा गया था, वहां पे मिस बलोच से स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि ये सारी स्टोरी जो आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन को असला दे रहा है तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, तो उसके ऊपर फॉरन ऑफिस की वजह मिस बलोच है, उन्होंने कहा कि ये एब्सोल्युटली अब्सर्ड और ये वो है बेसलेस है, हमने कोई असला किसी किस्म का जो है वो नहीं दिया। तो आपकी ये जो बात कि पाकिस्तान को डिनाई करना चाहिए, फॉरन ऑफिस ऑलरेडी डिनाई कर चुका है इसको।
ठीक है
जी जी।
अच्छा एक और आपने पता नहीं आपकी नजर से वो खबर गुजरी है कि नहीं गुजरी, वो इसरार कसाना साहब ने ब्रेक किया है, यहाँ कनाडा से ही कैलगरी में होते हैं हमारे दोस्त पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ब्रेक किया है कि इमरान खान के बारे में आईएसपीआर ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो बेसिकली इमरान खान को प्रमोट करने के लिए नहीं है बल्कि उसे मजीद डिफेम करने के लिए है, इमरान खान के अगेंस्ट बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री, और उसे नौशहरा के आर्म्ड ट्रेनिंग सेंटर, हालांकि नौशहरा में मेरे ख्याल में सिग्नल वालों का भी सेंटर है, और अगर सिग्नल वालों से स्टार्ट लेते तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता क्योंकि सिग्नल पूरे राबता कार होता है, ऐसी कोर है सिग्नल कोर पाकिस्तान आर्मी की जो राबता कार है पूरी आर्मी आर्मेड फोर्सेज जितनी पाकिस्तान की उनके दरमियान, लेकिन वो बताते हैं कि वहाँ आर्म्ड एंड एमिनिशन कोई ट्रेनिंग सेंटर है वहां वो दिखाई गई है, और बाद जहां वो आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर से भी रिपोर्ट हुई है और आर्मी पब्लिक स्कूल पिंडी से भी रिपोर्ट हुई है कि वहां भी स्टूडेंट्स को दिखाई जा रही है, और शायद अकेडमीज मुख्तलिफ अकेडमीज में और सेंटर्स में इमरान खान के खिलाफ एक जो है वो डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाई जा रही है। ये बड़ी बड़ी गलत एक रवायत है, अगर ऐसा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक क्रिकेटर हैं और बतौर क्रिकेटर उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उस पर सारी पाकिस्तानों ने सराहता है, फिर बतौर फिलेंथ्रोपिस्ट उन्होंने जो एक रफाई काम किए हैं शौकत खानम के हवाले से या नमल के हवाले से उस पर भी सराहा जाता है, हाँ जब वो सियासत में आए तो सियासत में जब भी कोई बंदा आता है तो वो मुतनाज़े हो जाता है किसी न किसी हवाले से, अगर वो जाने और उनकी सियासत जाने और जो लोग सियासत में मुलव्वस हैं वो जाने, हमारी पाकिस्तान आर्मी को, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी आईएसपीआर को ऐसे किसी काम में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, और अगर इल्जामात लग रहे हैं तो उसकी वाजे सामने आके तरदीद करनी की जानी चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब तक क्योंकि इसरार कसाना साहब ने रिपोर्ट किया है उसके बाद उसे बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स मजीद रिपोर्ट रिपोर्ट कर चुके हैं, तो इस पे अभी तक मैंने मेरी नजर से कुछ नहीं नजर आया। शाजी अगर आपके जेन से कोई रिबटल नजर आया आईएसपीआर का तो बताएं।
सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है और कहीं पे भी नहीं नजर आया, यानी कि जो न्यूज़पेपर्स जो हम फॉलो करते हैं जैसे कि जो है डॉन है द न्यूज़ है वो जैसे हम पाकिस्तान के जो हम पेपर्स फॉलो करते हैं पेपर के अंदर कोई बात नहीं आई, सोशल मीडिया पे इसका काफी शोर मचा हुआ है। तो अनलेस एंड अनटिल आईएसपीआर की कोई प्रेस रिलीज आए या कि कोई काकड़ साहब तो वैसे अभी न्यूयॉर्क में है, अगर उनकी तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान आएगा तो ही हम उसको मानेंगे, सोशल मीडिया की पोस्ट जो है वो तो उसको हम नहीं मानेंगे जाहिर है।
निगरान वजीर आजम काकड़ साहब जैसे आप शाह जी ने कहा कि वो न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं, क्या बताएंगे न्यूयॉर्क का दौरा कैसे जा रहा है उनका?
बहुत ही बुरा उनको खींचा फिर बहुत
परेशान है। काकड़ साहब ने जब पाकिस्तान से चले हैं तो उन्होंने रास्ते में कहा कि मैं मुझे एफिल टावर देखने का बहुत शौक है, उन्होंने पेरिस में स्टे किया कुछ 6-7 घंटे का उनका स्टे था और उसके बाद उन्होंने एफिल टावर सैर करना था, वो थे उनकी मिसेज और 2 बच्चे थे शायद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक, और के जी वहाँ एफिल टावर वो गए, वहाँ उन्होंने एफिल टावर का टिकट तो जो भी होता है सो होता है, और सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि जी वो 300 यूरो का वहाँ पर पर्सन खाना था, वो खबर शायद ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उस सिलसिले में रिपोर्ट्स पता कराई हैं, रब्ता किया है, मैंने वहाँ पेरिस में हमारे जो पाकिस्तानी निजात जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पूछा है, उनका कहना यह था कि इस बात में हकीकत नहीं है क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन जब मैंने अपने सोर्स को वापस उनसे रब्ता किया तो सोर्स ने मुझे जो रिपोर्ट्स भेजी उन्होंने मुझे बाकायदा वहां के रेट्स बता दिए और उन्होंने मुझे बताया कि ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स जो हैं एफिल टावर के ऊपर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ऑनलाइन इस वक्त भी बुकिंग रिसीव कर रहे हैं और वहां जो सबसे महंगा रेस्टोरेंट है जाहिर है काकर साहब तो इस वक्त फुल अजाशी के मूड में है क्योंकि वो शायद पहली और शायद आखिरी दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तो वहां जो महंगा तरीन होटल रेस्टोरेंट्स हैं मेरे पास पूरे उन रेस्टोरेंट्स के लिस्ट रेट्स हैं, महंगा तरीन जो रेस्टोरेंट है उस पर वहां 7-course जो टेस्टिंग मेन्यू है 230 यूरो पर पर्सन है, तो जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी उसमें 300 यूरो था, चलें मान लेते हैं हम कि वो 300 यूरो नहीं होगा लेकिन 230 यूरो पर पर्सन तो है, और वहां बिलिंग का मसला आया तो फिर वहां हमारे जो अम्बेसडर हैं और अम्बेसी का जो अमला है पेरिस में पाकिस्तानी अम्बेसी का, उन्होंने कहा जी कि ये आप हमारे मेहमान हैं हम कर देते हैं, बाद में उन्होंने आपस में उनकी गुफ्तगू ये थी अम्बेसी के अमले की कि ऐसी कोई मद तो नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इतना महंगा खाना और उसके बिल और वहां का सारा कुछ करें, लेकिन फिर कुछ करना पड़ेगा आप कहीं से, अब पता नहीं वो पाकिस्तानी जो वहां रहते हैं उनका कम्युनिटी वेलफेयर फंड उसमें से कहीं से ये पेमेंट होगी या कहां से होगी, लेकिन उनकी शौक पूरे किए जा रहे हैं, उनका जो 6-7 घंटे का स्टे था पेरिस में वहां उनके एफिल टावर देखने के, उनके महंगे खानों के, उनके शॉपिंग के, उनके वो पूरे लवाजमात का ख्याल रखा गया और उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, और अब वो शायद वहां पाकिस्तानियों का जो कम्युनिटी वेलफेयर फंड है उसमें से शायद वो अदायगियां हो रही होंगी, एडजस्टमेंट होगी हो रही होगी अकाउंट्स में, लेकिन वहां ये काफी कुछ करके आए हैं। न्यूयॉर्क पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने जो होटल जिस होटल में वो स्टे किया है उन्होंने वो पार्क हयात, उसे पार्क हयात भी लोग कहते हैं और पार्क हयात भी कहते हैं, उसमें उन्होंने स्टे किया हुआ है, उसका आम सा जो कमरा है वो उसका जो रेट सामने आ रहा है वो 2,500 है और जो उनका VVIP स्वीट है वो $6,000-$7,000 पर नाइट है। अब वहां उसमें वो $6,000-$7,000 पर नाइट वाले वहां स्टे कर रहे हैं काकड़ साहब। इस दौरान उन्होंने उनकी एक मुलाकात अच्छी हुई है ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब से, एक उनकी मुलाकात आज चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से हुई है और एक उनकी अच्छी मुलाकात जो है वो आज हुई है उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट से। इसके अलावा जहां जहां वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लोग फॉरन ऑफिस के, उन्हें कोई अच्छा खातर खा जवाब नहीं मिल रहा। तैयब अर्दोगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, बड़ी कोशिश थी हमारे फॉरन ऑफिस की कि तैयब अर्दोगान से फोटो आप हो जाए, इनका शेक हैंड करने का मौका मिल जाए इन्हें और वो एक बड़ी खबर होगी, लेकिन तैयब अर्दोगान साहब बहुत बिजी थे बाकी लीडरान से मिलने से। उन्होंने कहा कि इस केयर टेकर बंदे को जो 4 दिन के लिए आया इससे मैंने क्या मिलना, वो नहीं मिले, वहां नहीं हुआ। लेकिन आज जो उन्होंने वहां काउंसिल ऑफ ऑन फॉरन रिलेशंस वहां अनवारुल्लाह काकड़ साहब गए और वहां उन्हें कहा भी गया था, जो ब्रीफ किया गया था हमारे फॉरन ऑफिस के बंदे, क्योंकि उनके साथ इस वक्त जो टीम है फॉरन ऑफिस की वो बहुत अच्छी टीम है। सेक्रेटरी खारजा जो है साइरस काजी, ये 6 साल वाशिंगटन डीसी में रह के गए हैं और उन्हें अमेरिकन को और यूएन को कवर करने का और इसमें मामलात का बहुत बेहतर अंदाजा है फॉरन सेक्रेटरी साइरस काजी साहब को, और साथ सलीम अब्बास जिलानी जो इस वक्त केयर टेकर फॉरन मिनिस्टर हैं ये भी वाशिंगटन डीसी में भी रह के गए हैं, फॉरन सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो दोनों कैपेबल बंदे हैं। फिर इस वक्त जो हमारे एम्बेसडर हैं मसूद खान, ये यूएन में हमारे परमानेंट रेजिडेंट मिशन रहे हैं, ये तीनों बंदे वेल इक्विप्ड हैं, सीजन डिप्लोमेट हैं। वो साथ होने के बावजूद जब काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस पे आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब गए तो उन्हें बताया गया था कि आपने ठहर ठहर के जवाब देने हैं, जवाब लंबे लंबे देने हैं, आपने जल्दी जल्दी सवालों के जवाब खत्म करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि वो आपको घेर लेंगे। और वहां जो क्वेश्चन हुए वहां जवाब नहीं खातर खा कोई दे सके काकड़ साहब, और एक जवाब तो उन्होंने ऐसा दिया कि जिसपे अब काफी उस पर फ्लैशबैक उन पर लैशबैक आ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज इसराइल, चाइना इज इसराइल, ये पाकिस्तान चाइना का इसराइल है। उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरह इसराइल अमेरिका का इसराइल कहा जाता है इसी तरह पाकिस्तान भी चाइना का इसराइल है। उस पर अब काफी ले दे हो रही है और अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब को, हालांकि इस क्वेश्चन को वो डक भी कर सकते थे, बचा सकते थे, इधर उधर जा सकते थे, लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। लेकिन अब शायद आइंदा 1-2 दिनों में वो मीडिया से ग्रेज भी करेंगे। कल शाम 5 से 6 बजे एक टेंटेटिव मीटिंग है उनकी पाकिस्तानी मीडिया से जो यूएन को कवर कर रही है, लेकिन लग रहा है कि अब शायद वो कल पाकिस्तानी मीडिया से भी कल शाम 6 बजे नहीं मिलेंगे क्योंकि आज जो उनके साथ हो गई है वो अब मीडिया से पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जब जाएंगे तो इंटरसेप्ट .com की जो साइफर वाली स्टोरी है उस पर भी क्वेश्चन होगा, दी इंटरसेप्ट .com की जो दूसरी स्टोरी है उस पर भी काम होगा, क्वेश्चन होगा, इस पर भी बात होगी कि ये कैसे पाकिस्तान चाइना का इसराइल है। और बाकी भी जो इंडिया और इस पे बात तो की है काकर साहब ने आज कनाडा के हक में इंडिया के खिलाफ, लेकिन और काफी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं तो वो शायद ना मिले। पाकिस्तान से भी कोई ज्यादा डेलीगेशन नहीं आया, सादी अफजाल एक आई हैं और आपको पता है सादी अफजाल बताया जाता है कि इन दोनों फैसल बावड़ा साहब की वाइफ हैं, तो वो तो जाहिर है प्रो मिलिट्री और वो सारे कवरेज के लिए वो आई हैं। और एक इमरान शफकत साहब लाहौर से आए हैं, वो भी आपको पता है मुर्तजा सोलंगी साहब के हम ख्याल और उस तरह के हैं, इमरान खान के खिलाफ उन्होंने हमेशा तकरीरें करते हैं। तीन चार जो बंदे आए हैं वो कोई प्रोमिनेंट नहीं है, और जिस तरह के पहले होता था पाकिस्तान से कोई प्राइम मिनिस्टर आता था यूएन पे तो वहाँ एक पूरी पाकिस्तान का एक मीडिया के पूरा एक डेलीगेशन काइंड ऑफ एक बड़ा हैवी वेट जर्नलिस्ट आते थे और डिस्कशन होती थी। इस वक्त सिर्फ तीन चार जर्नलिस्ट हैं उनके साथ और उनमें भी कोई खास प्रोमिनेंट नहीं है और कोई प्रॉपर कवरेज उन्हें मिल भी नहीं रही, और प्रॉपर कवरेज अनवार उल हक साहब चाहते भी नहीं है। शायद उनकी टीम को पता भी है कि अनवार उल हक काकड़ साहब को ज्यादा एक्सपोजर अगर दे दिया तो शायद इसी तरह होगा जिस तरह आज हुआ है उनका चाइना के क्वेश्चन पे उनके साथ हुआ है।
फियाज भाई, शायद आपको पता नहीं है कि आज उनकी मुलाकात जो है आईएमएफ की चीफ जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा उनके साथ हो चुकी है, और उन्होंने बड़े प्यार से, जिसको कि हमारा फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि उन्होंने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने उनको बड़े अच्छे वार्मली उनको रिसीव किया और उनको बात की है। आपको पता है कि ये जो आपने बैकग्राउंड दिया कि इतने एक्सपेंसिव होटल में ठहरे हैं, इससे पहले जब इमरान खान गए थे तो एक्सट्रीमली मामूली एक होटल में जाके वो ठहरे थे व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर।
ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है,
जी एम्बेसडर के घर ठहरे थे। बड़ी वो मैं कह रही हूँ मामूली से उनके पैसे नहीं जरूरत है तो अगर ठहरना भी है तो बड़े मामूली से। जी तो ये जो है वहां पे गए हैं, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने इनको पहली बात ही ये की है कि आपके मुल्क की हालत जो इतनी खराब है, यू नीड टू टैक्स द वेल्दी, और जो आपके मुल्क का पुअर है उसको आपको रिलीफ देने की जरूरत है। तो पता नहीं अब इन लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है, बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से ये बात इनको की है और मेरे ख्याल में इनको समझ नहीं आई कि वो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से, क्योंकि जाहिर है कि उनको मिली होगी ये खबर कि ये इतने एक्सपेंसिव यहां के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स जो है वो पार्क हायत जो है, ये पूरी हायत फैमिली है जिनके के हायत रिजेंसी और बाकी के होटल्स भी हैं, तो वो हयात तो हम कह देते हैं ना पाकिस्तानी, बट द नेम इज हायत। हाँ जी, तो वो उधर जो है वो ठहरे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उसी तरफ वो इशारा कर रहे थे कि इतना गरीब मुल्क जिसके के ऊपर इतने कर्जे हैं तो आप इतने एक्सपेंसिव होटल में अपने डेलीगेशन के साथ जो भी कोई दो चार बंदे हैं आपके साथ उनके साथ क्यों ठहरे हुए हैं।
फैज मौलाना साहब, फॉरेन सेक्रेटरी हैं सायरस काजी, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी सायरस काजी से कल हमारे मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनवर इकबाल साहब और एक दो और, उन्होंने जब बात की सायरस काजी से तो सायरस काजी ने साफ कहा कि डोंट एक्सपेक्ट एनी टेंजिबल रिजल्ट्स फ्रॉम दिस विजिट, कि आप अनवार उल हक काकड़ साहब के विजिट से कोई ऐसे टेंजिबल रिजल्ट्स की तवक्को ना रखें, यहां से क्या निकलना है, वही बात जो मैं और आप कर रहे हैं।
जी जी बिल्कुल।
फैज मौलाना साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम हमें इजाजत नहीं देता कि और बातचीत की जाए, क्योंकि न्यूज का टाइम शुरू हो चुका है हमारा और अब हम न्यूज की तरफ ले चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और इंशाल्लाह ताला अगले ट्यूसडे को फिर आपसे बातचीत होगी, उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ सर।
थैंक यू।
ये थी फयाज बिलाना साहब से बातचीत और कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम। विल बी राइट बैक विद द न्यूज ऑफ द वर्ल्ड।
सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा, हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक बाएतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड माल्टन में, रूबी ज्वेलर्स।
Fair & McKay Menswear, three elements that represents the brand, fit, quality and value, quality comparable to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss.
New clearance and outlet launched, 100% Italian wool suits from $249.99, 100% Egyptian cotton shirts from $29.99, 100% Italian wool trouser from $49.99, light winter jackets $79.99, wool cashmere winter coats $299.99.
1535 Mayside Drive, Unit 19 and 20 in Mississauga, 905-670-3388. SpareAndMcKay.com.
Pizza's Pros and Wings, 6 location to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yaho, Mississauga. Fresh or madedar pizzas ki variety. Ya order karna ho apna manpasand custom made pizza. Iske alawa pizza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8838,
Valia Traffic Legal Services set in up RS Valia.
Careless driving.
Speeding, ya phir accident.
Fail to remain stop at the scene.
Red lights, ya phir seat belts.
Permit drive without insurance.
Racing, student driving, ya phir caught while using phone.
Speeding.
RS Valia, aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 905-454-2112, 454-2112.
Akal Truck and Loom.
Tade truck badshah di quality service repair, oil change, wash te maintenance.
Ek hor khush khabri.
North American, Chinese te Korean nave te istemal shuda tires with full warranty.
Akal Truck and Loom. 1776 Mearside Drive, 905-565-1100. 905-565-1100.
Save big, big bucks. Polystream Auto Glass, windshield repair and replacement. Small chip ho ya scratch, professional staff karenge aapki windshield repair minto mein. Wo bhi insurance claim ke saath. Special chip repair promotion of $60 only. Serving in Mississauga, Milton, Oakville, Burlington or Hamilton mein. For service call today 905-818-8472. 905-818-8472.
वहम गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल बाइंग और सेलिंग
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं घर की इवैल्यूएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर 6478986245
जी साहब वेलकम बैक अगेन एंड 6:37 और 11 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं और यानी 5:00 भाई हाँ हम 6 ये आप एक घंटा आगे ले जा रही हूँ
अस्सलाम वालेकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुह
कैसे हो मजीद भाई
हैं तो आप एक घंटा मुझे आगे ले जा रही हैं खामखर मैं कह 6:37 6:37 कहाँ 5:37 हुए
नहीं आप आगे चलो मजीद भाई जमाने से आगे चलो
जमाने से आगे चलना है हाँ जी 6:00 जी बजा दो 6
की कर सकते हो तुम कैसे इंडिया ने तड़ियां दी है कैनेडा कनेडा को कहते हाँ भाई हम कर रहे हैं क्या कर सकते हो तुम बताओ जरा है
इनके जो फंड है उसमें से तो कितने $50 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बहुत बड़ा फंड है इसको इन्वेस्टमेंट की भी है उसके अलावा कितने
लेकिन इंडिया को फिक्र नहीं है इसलिए वो जो फियाज भाई भी अभी खतरे का इजहार कर रहे थे ना मैं चाहती थी कि उनका इंटरव्यू सारा हो जाए आई डिडंट वांट टू स्टॉप हिम क्योंकि वो बात फिर बहुत ज्यादा लंबी होती वो कह रहे हैं ना कि ये कनाडा की जो है वो इन्वेस्टमेंट है वहां पे और कनाडा की 300 कंपनियां हैं तो मतलब शायद ये हम इंप्रेशन ले लें कि शायद कनाडा जो है उसको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर उसने इंडिया को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर कनाडा ने पुल किया इंडिया को कोई नुकसान भी नहीं होएगा क्योंकि आप ये देखें ये जो फाइव आईज जो कंट्रीज हैं ये अभी तक इन्होंने सिर्फ बहुत ही माइल्डली बात की है कि हम कंसर्न हैं जो ट्रूडो साहब ने बात की उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनके पास यही बात अगर चाइना या रशिया से होती ना ओ फटाफट फिर ते फुर्तियां तुसी स्टेट डिपार्टमेंट दियां देखनियां सन वो जड़े साडे मास्टर्स बैठे हैं ना अंकल जो दा कंट्री फिर ते तुसी देखना ओ के ऐसे किया चाइना ने ओ ऐसे किया रशिया ने ओ ये तो है ही फैसिस्ट और ये है ही ऐसे तो ये है वो है फ्लाइंग डिंग है स्टोरियां आ जाती थी इंडिया के ऊपर अभी तक क्यों नहीं कर रहा कोई वी आर जस्ट कंसर्न किसी ने नहीं कहा कि ये एलिगेशन जो हैं ये बड़े सीरियस हैं हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे नो सच थिंग एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स टू कमर्शियल इंटरेस्ट इन सारे कंट्रीज के देर आर टू थिंग्स ये सारे जो यूरोपियन यूनियन के या जो नेटो कंट्रीज हैं इन सब के कमर्शियल इंटरेस्ट है इंडिया के साथ नंबर वन नंबर टू इस वक्त जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बनी हुई है उसमें ये सारे यूरोपियन कंट्रीज दीवार के साथ लगाना चाहते हैं चाइना को नंबर वन नंबर टू रशिया को اس میں ان کو جو ایک ان کے مطابق جو امید کی کرن نظر آ رہی ہے, جو ان کی فائٹ جو کبھی جیسے پاکستان کو انہوں نے اپنی فائٹ لڑوائی تھی نا, اس وقت ان کو جو لگتا ہے کہ ہماری فائٹ کوئی لڑ سکتا ہے, دیٹ از انڈیا. اسی لیے انڈیا کے ساتھ دبا دب جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, ایم او یوز بھی سائن کیے جا رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے, ہم تم کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, اسی تھوڑے پرام ہاں, یہ ہے وہ ہے, صرف چائنا اور رشیا کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے. ایز اے ریزلٹ آپ دیکھ لینا کہ کوئی انہوں نے جو ہے ٹروڈو صاحب کا بہت بڑھ کے آگے بڑھ کے, جیسے ہی ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ہمارے دوست سانجے ہیں اور دشمن بھی سانجے ہیں نیٹو اور جو یورپین یونین کی جو وہ کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق, کوئی جسٹن ٹروڈو صاحب, اور پھر آپ دیکھ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ بیچارے کینیڈا کوئی تھوڑا سا جھکنا پڑے, کیونکہ آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں, آج بھی بیان آیا ہے ٹروڈو صاحب کا, ہم ہندوستان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے آپ کام کرو, ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ یعنی کرو اور یہ کرو. یعنی آپ سوچو ذرا کہ اگر ان کے را کے بندوں نے آ کے, الیجلی میں کہہ رہی ہوں, الیجلی کہہ رہی ہوں, اگر انہوں نے آ کے مارا ہے آپ کے بندوں کو تو مطلب ہے وہ خود سے ہاں کر لیں گے. ادھر تو کوئی نواز شریف صاحب نہیں بیٹھے ہوئے نا جو آ کے کہیں گے ہاں ہاں جی اجمل قصاب ہمارا بندہ تھا, ہم نے یہ سارا آرکیسٹریٹ کیا اور ہم نے مارا ہے. انڈیا والے تو ایسے نہیں ہیں نا, وہ آپ کے خیال میں مانیں گے یہ سب بات؟
ویسے دنیا اگر تھوڑا سا اور ان کو پروف مل جائے
تو پھر 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 ٹروڈو صاحب کو پروف سامنے لانے چاہیے, لانے چاہیے,
آف کورس یس, وداؤٹ دی پروف یو کینٹ ہیو نتھنگ. مگر یہ کہ پھر جو ان کے ایلائز ہیں دنیا میں, پانچ بڑے ایلائز جو ہیں اسپیشلی دے ول ہیو ٹو کم اینڈ,
مجھے مگر اس وقت لگ نہیں رہا, مجھے اس وقت لگ نہیں رہا
دے ول ڈو دیٹ رائٹ اوے. نہیں کیا انہوں نے مگر
کیونکہ ابھی تک انہوں نے ایک
تو اگین میں کہوں گا کہ سیکرٹری لیولز پہ بات چیت چل رہی ہوگی ان
کی, ہے نا, کہ بھائی کیا اینمیز تو اب یہ نہیں ہے نا ان کی, کوئی انڈیا پاکستان جیسی تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا آپس میں, تو دے ول کیپ ٹاکنگ. آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ جو منی شنکر ایئر صاحب کا میں نے انٹرویو لیا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا چاہے آن دا سرفیس انڈیا پاکستان کی کتنی بھی لڑائی چلتی تھی, سیکٹری لیول کی ٹاکس جو تھی, بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہوتی تھی وہ چلتی رہتی تھی, اونلی ان دا لاسٹ 9 years جب سے مودی جی آئے ہیں, اکارڈنگ ٹو منی شنکر ایئر, اونلی ان دا لاسٹ 9 years جب سے مودی جی آئے ہیں اس وقت سے پاکستان کے تمام بیک چینل جو ٹاکس ہیں انڈیا کے ساتھ وہ بالکل اسٹینڈ اسٹل پہ ہیں, کوئی نہیں ہو رہے ہیں, یو سی. تو اس لیے جناب اے نے کہانیاں, چلو جی چھوڑو سانو کی بنا کہانیاں دے نال ہے, سانو دے نہ ملین ڈالر مل رہا ہے نہ کوئی, آج کل ہمارے لیے کوئی لوگ جو ہیں وہ جلیبیاں لے کر آ رہے ہیں, آپ دیکھو ذرا, مطلب ماجد بھائی نے کروڑ روپیہ بیٹی کی شادی پہ لگا دیا ہے, اتنے کوئی کنجوس ہیں, اتنے ان کو لفافے ملتے ہیں, مجال ہے ہمارے لیے کوئی $10 کی انہوں نے کبھی جلیبیاں لے کر آئے ہیں؟
Still didn't get the message?
No. جب تک آپ لائیں گے نہیں, آپ مجھے جتنے مرضی میسج دے دیں کہ آپ نہیں میرے لیے لانا چاہتے, آپ میرے لیے نہیں لانا چاہتے, لیکن
haven't got the message.
نہیں, میں آپ کو یاد کراتی رہوں گی,
میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں,
نہیں آپ کو میسج نہیں, نہیں ہم یہ الفاظ لے نہیں رہے, ہم موڑ رہے ہیں یہ آپ کے الفاظ, ہم کو جلیبیاں کھلاؤ. اچھا جی ٹھیک ہے جناب, تو ہماری تو کوئی بھی جو ہے وہ خواہش مانی نہیں جا رہی, ٹھیک ہے, نہ تو ہمیں کوئی اٹلی لے کے جا رہے ہیں, نہ کوئی اٹالینس کے ساتھ ہمیں ملا رہا ہے, نہ ملین ڈالر دے رہا ہے, نہ کوئی ہمارے لیے, دیکھیں کتنی معصومانہ میری جو ہے نا زندگی کی خواہشات ہیں ماجد بھائی, ہے نا, میں نے کبھی کہا ہے کہ مجھے وائٹ ہاؤس چاہیے, میں نے کبھی کہا ہے مجھے لیمبرگینی جیسی گاڑی چاہیے,
ہم آپ کے گھر کو وائٹ کر دیں گے, لیجیے ایک دن صبح آئیں گی آپ تو آپ کا پورا گھر وائٹ نظر آئے
گا,
پینٹ اسپرے پینٹ لیں گے کتنا خرچ آ جائے گا,
وائٹ واش کریں گے آپ,
کتنا خرچہ آ جائے گا ہمارا,
$100
کا, $100 کے ہم نے اسپرے پینٹ خریدنے اور سارے وہ بھی ڈالر اسٹور سے بڑے ملتے ہیں,
وہی وہی
وہ والے نا, تو وہ جا کے اپنے پورا آپ کا گھر,
ہماری تو بہت ہی معصومانہ خواہشات ہیں,
یہاں تک کہ آپ کیا یاد کریں گی آپ کی گاڑیوں کو بھی اسپیئر کر دیں گے,
اچھا اس پہ بھی اسپرے پینٹ,
اسپرے پینٹ
$100 میں یہ سارا کام,
$100 میں سارا کام, تو آپ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو وہاں پر وائٹ ہاؤس میں رہتے ہیں جی, وائٹ ہاؤس ہے نا ان کے پاس, ان کی گاڑیاں تو وائٹ نہیں ہے نا,
نہیں
آپ کی تو گاڑیاں وائٹ,
گاڑیاں ان کی کالی ہیں جیسے کالے دل ہیں. دیکھو پین اے جڑا ہے نا اے سارا ماجد بھائی مینوں خراب کر دیں, میں نے کبھی آپ کے, دیکھو انکل سیم میں آپ کے نہ کنٹری کے نہ آپ کے خلاف ہوں, یہ ماجد بھائی مجھے پرووک کرتے ہیں, ہے نا, جیسے ٹروڈو صاحب نے کہا نا ہم انڈیا کو پرووک نہیں کر رہے, لیکن ماجد بھائی مجھے پرووک کر رہے ہیں, یہ میری اسٹیٹمنٹ ہے آفیشیل,
آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ساری جڑ, پوری جڑ جو ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے سر, آپ کو پوری دنیا میں یوکرین کی وار, یہاں کی وار, وہاں کی وار, دنیا میں ये सारी जड़ मेरे सामने बैठी है।
अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मजद भाई तो बहुत, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने मर्द है ना वो तो इंतहाई मासूम है। मिर्ची जो है मैं हूँ, सरबत बाजी है हमारी, शरबत बाजी और जो है आरफा बाजी, हम मिर्चियां हैं है? और आप सारे मासूम।
आई डिडंट से दैट यू सेड इट, बट आई डिडंट से यस और नो,
क्योंकि आप तो फेमिनिस्ट है ना, हम तो इंतहाई एंटी फेमिनिस्ट है ना मजद भाई, तो आप तो सर है, आपको तो लेडी से बड़ा प्यार है, है जी?
ये हो गया जी।
अच्छा जी, अच्छा जनाब, हमने बड़े दिनों से आपको बताया नहीं है, हमारी वेबसाइट पे भी जाया करें, बड़ी प्यारी वहां पे स्टोरियां होती हैं, उनको जरा फॉलो किया करें, ठीक है जी। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो ये हैं एग्जीक्यूटिव होम रियल्टी वाले, ये कहते हैं जी हम आपको सारा कुछ हम आपके लिए कर लेंगे, आपने खाली घर जाके बेच देना, ठीक है जी, तो वो आपको सारी लीड्स दे देंगे। लीड्स ही अगर आपको मिल गई, अगर आपको पता ही चल गया कि किस इलाके में कौन सा घर कौन खरीद रहा है, हैं, तो बस फिर आपने करना क्या, बस आपने तो घर जाके उसको बेच ही देना है ना। तो आपको अगर ये इस तरह के सारे लीड्स चाहिए और आप मोटे पैसे भी कमाना चाहते हैं तो आप मतीन साहब को कॉल कर लें, इनका नंबर है 6478856655। और जनाब हमारे राजा बादशाह दिल के भी बादशाह हैं, कहते हैं अगर आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है तो मैं आपका 1775, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो बचा ही सकता हूं, इसके अलावा आपका केस देखूंगा, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा आपके कोई पैसे बचाऊं, तो आप राजा बादशाह जी के साथ के पास जाएं, ऑल स्टेट एजेंट्स एजेंसी के अंदर ये होते हैं और इनका नंबर है 6472903773। और जनाब देख लो मजद भाई दिन ब दिन पितले होते जा रहे हैं, तो अगर आपने भी ऐसे पितले होते रहना है तो आप नानक बोब पे जाओ, नानक बोब के ये ग्रिल्ड आइटम माजिद भाई कहते हैं, रोटी चावल नहीं खाते हमारी तरह बिल्कुल, तो इनके घर से रोज जो है वो बड़े चिकन की बड़ी वो चीजें आती हैं, तो माजिद भाई तो ये ग्रिल चीजें आपने खानी है तो आप जाएं, ये हैं 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसिसागा में, और इनका नंबर है जो 9052829797। और जनाब अगर आपने काम गलत करने हैं लेकिन खाना हलाल खाना है तो आप ऑन्टेरियो के लार्जेस्ट पाकिस्तानी बफे जहां पे मिलता है विलेज टेस्ट उस पे जाएं, विलेज टेस्ट की अब एक नई ब्रांच खुल गई है ओकविल में, ये है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट के ऊपर, तो अगर आपको वहां पे बैठ के खाना है या आपको ऑर्डर देना है तो आप उनको कॉल कर लें ऑन 9052262294, ठीक है भाई।
और ग्रिल एंड चिक पे पहुंची साहब, ग्रिल एंड चिक बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन, इनका कहना है दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन और इसके साथ साथ 3525 प्लैटिनम ड्राइव इन मिसिसागा। बेस्ट ग्रिल चिकन चाहिए आपको तो आप पहुंचाइए ग्रिल एंड चिक पर, इनकी वेबसाइट है www.grillandchick.com और इनका फोन नंबर है साहब 9054560500। जी
जी, अच्छा जी मजीद भाई, हम जो है अपनी अब खबरें शुरू करते हैं, इसमें जाहिर है कि आपने कुछ तो देखी होंगी और कुछ शायद आपने मिस कर दी है, तो हम साढ़ा तो कम ही है तो हम खुश करना है जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने आज अनाउंस किया है कि एक नया लेजिस्लेशन जो है ये इंट्रोड्यूस कर रही हैं टू रिमूव जीएसटी चार्जेस फ्रॉम न्यू रेंटल डेवलपमेंट्स। और आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब का ये जो था प्रॉमिस था और उन्होंने कहा था कि ये हम एक लेजिस्लेशन लेकर आएंगे अर्लियर दिस मंथ, जिस वक्त वो एड्रेस कर रहे थे हाउसिंग क्राइसिस के ऊपर और अफोर्डेबिलिटी क्रंच जो चलता जा रहा है, तो रिपोर्टर से बात कर रहे थे उसी सिलसिले कि आज क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जो है डिटेल्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो थे वो ऑलरेडी हमको कह रहे थे कि अगर आप ये जीएसटी चार्जेस जो है न्यू रेंटल डेवलपमेंट से हटाएंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो है उसमें भी तेजी आएगी और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ज्यादा लोग जाने लगेंगे। तो ये जो बिल है ये एक और भी काम करेगा, ये स्ट्रेंथन करेगा कॉम्पिटिशन ब्यूरो को, क्योंकि कॉम्पिटिशन ब्यूरो जो है उसके पास फिर अब पावर होगी कि सारी इंफॉर्मेशन वो ले फ्रॉम द कंपनीज के वो उनसे स्टडी कर सके कि भाई ये किस तरह से आप जो है सारी चीजों की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हाउ आर यू गोइंग अहेड विद कंस्ट्रक्शन और वो सारी चीजें। और ये जो मर्जर लॉज हैं इनको भी टाइटन किया जाएगा, इसकी वजह से क्या होएगा कि जो बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है उसमें भी फिर लोग देखेंगे कि भाई अब जीएसटी कट मिल रहा है हमको और हमको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं तो फिर बेटर प्राइसेज आ सकेंगी सामने और बेटर प्राइसेस में जो ये घर हैं ये बन सकेंगे। तो उस सिलसिले की ये आज सारी इन्होंने अनाउंसमेंट की है। और इनको जब अर्लियर कहा गया था कि भाई आप ये सारे लॉज को देखें तो लिबरल पार्टी ने वैसे कहा था कि हम इन सारे लॉज को रिव्यू करेंगे, तो उसी को मेरे ख्याल में अब रिव्यू करने के बाद आज क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ये सारी डिटेल्स जो हैं वो दी हैं। ऑन्टेरियो के जो इंटेग्रिटी कमिश्नर हैं उन्होंने अब कहा है जी कि वो दो डेवलपर जो कि रिलेटेड थे ग्रीन बेल्ट के साथ, जो कि उनकी बेटी की वेडिंग पे आए हुए थे, तो उस सिलसिले में वो कहते हैं कि हम डक फोर्ड साहब को इसके लिए बिल्कुल नहीं کر سکتے کچھ ان کے خلاف کوئی مورچہ نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ انسفیشینٹ گراؤنڈ ہے جسٹ بیکاز اس کی بیٹی کی جو تھی وہ شادی تھی اور یہ جو ڈیولپرز شاکر رحمت اللہ اور سرجیو مینچیا جو ہے وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کے فیملی فنکشن میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فورڈ صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان سلیکٹنگ گرین بیلٹ پراپرٹیز. ان فیکٹ یہ جو سارے کا سارا کام تھا انہوں نے اپنے جو ہاؤسنگ منسٹر سٹیو کلارک تھے ان کے اوپر چھوڑا تھا, تو اس لیے ہم فورڈ صاحب کو اس کا الزام نہیں دے سکتے اور فورڈ صاحب کو اور اس لیے بھی زیادہ الزام نہیں دے سکتے کہ انہوں نے یہ سب چیزیں جو تھیں ہاؤسنگ منسٹری کے اوپر چھوڑی ہوئی تھیں. تو منسٹر کلارک حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اس چیز کے اندر شامل نہیں تھے کہ کسی کو فیور کرتے, لیکن انہوں نے جو پروسیس پیدا کیا اپنی منسٹری میں وہ فلاڈ تھا کیونکہ اس کا فائدہ پھر چیف آف سٹاف نے اٹھایا, تو ان کو چاہیے تھا اپنی منسٹری میں زیادہ کنٹرولز کرتے اور سپرویژن لے کر آتے. تو اس لیے جو ہے فورڈ صاحب جو ہے انہوں نے تو ساری اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ ڈال دیا منسٹر کلارک پہ کہ وہ ساری یہ چیزوں کو پراپرلی پروسیس کریں گے. تو اس لیے ہم جو ان ایکشنز کی وجہ سے نہ تو پریمیئر صاحب کو کر سکتے ہیں, ویسے ہم نے پہلے انٹیگریٹی کمشنر نے کہا کہ ہم نے منسٹر کلارک کو بھی اس کا دوش یہ نہیں دیا تھا کہ وہ اس کے اندر شامل ہیں کرپشن میں, بلکہ یہ دیا تھا ہم نے کہ فلاڈ پروسیس ہے, ان کو زیادہ نظر رکھنی چاہیے تھی. یہ ساری بات انہوں نے اس وقت کی جب NDP کی میرٹ اسٹائلز جو ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, یہ جو انٹیگریٹی کمشنر ہیں جے ڈیوڈ ویک, ان کو کہا تھا کہ آپ ایک انکوائری بٹھائیں تاکہ وہ تمام ڈارک پلیسز جن پہ ابھی تک آپ نے لائٹ شیڈ نہیں کی ہے وہ سامنے آئے اور پتا چلے. تو آج فورڈ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ جو گرین بیلٹ لینڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ سارا پلان ہی ہم اسکریپ کر رہے ہیں, وی آر اسکریپنگ اٹ.
مگر اپوزیشن جو ہے ابھی بھی نہیں چھوڑے گی,
ابھی بھی نہیں چھوڑے گی. یس یس یس
کہے گی وہ جن جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سامنے لے کے آؤ اور ایڈمٹ کرو کہ یس اب ہماری جو ہے ہمارے سے غلطی ہوئی, مطلب غلطی اس تو ایڈمٹ تو کر لیا انہوں نے کہ بھائی وی ور رانگ, وی آر ٹیکنگ بیک آل دا گرین بیلٹ کی, ان کو واپس کر رہے ہیں. تو مگر پھر بھی یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ سامنے آئیے کیونکہ,
لیکن اس میں جو بیڈ چیز ہو گئی ہے نا ماجد بھائی کہ وہ جو ہاؤسز بن جاتے ہیں بہت سارے ہیں نا اس میں تو, اور جو سارے لوگوں کے جو
1.5 million
ہاؤسز اور وہ جو ہاؤسنگ کرنچ ہے, ہاں
نیت ان کی بہت
صاف تھی بالکل, اور ان کے منسٹر کی بھی ویسے صاف تھی, سٹیو کلارک صاف تھی,
ہی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ.
یس دیٹس رائٹ,
اگر یہ کہ ان کے پاس کچھ ایسے حالات بن گئے ان کو بھی اسکریپ کرنا پڑا,
وہ ساری مستی جو ہے وہ چیف آف اسٹاف نے کی اور اس کی وجہ سے بےچارے منسٹر کو بھی کرنا پڑا جو ہے وہ ریزائن, اور کلید رشید کے اوپر بھی بات آ گئی اور جو ہے اب اس کے اوپر بھی آ گئی. تو بہرحال لوگوں کا نقصان ہے کیونکہ ہاؤسز اب نہیں بنیں گے اور یہ کرنچ جو ہے مارکیٹ کے اندر رہے گا اسی طرح. اچھا جی, یہ جو ہے کینیڈا میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو ہی پارٹیز ہیں, لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی, اور ایک دو چھوٹی اور بھی آئی تھی, گرین پارٹی تو ہے ہی آپ کو پتہ ہے, NDP ہے, لیکن کچھ اور بھی نئی پارٹیز آئی تھی. آپ کو پتہ ہے ہم نے بتایا تھا ایک بلو پارٹی آ رہی ہے, ایک PPP بنائی تھی, اب ایک اور پارٹی جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں لبرلز اور کنزرویٹوز جو ہیں ان سے بے انتہا تنگ آئے ہوئے ہیں. نیو برنزوک کے جو انڈیپینڈنٹ MLA ہیں ڈومینک کارڈی, انہوں نے ایک گروپ سے بات کر رہے تھے ایٹ سینٹر آئس کینیڈینز, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ اب میں ایک نئی پارٹی ایک اور لے کر آ رہا ہوں کینیڈین فیوچر, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو لبرلز ہیں ان کا جو بلیف ہے کہ جی ہمارے پاس تو ہم تو پرابلمز اس طرح سالو کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو منی تھرو کرتے رہیں اور چاہے وہ منی اچھی ہے بیڈ ہے ان کے لیے فائدہ دیتی ہے کہ نہیں, بس وہ لمبے لمبے اور گڈ پیکجز دیتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے جی لوگوں کے مسئلے حل جو ہو جائیں گے. کنزرویٹوز جو ہیں وہ تو بیسیکلی US کی جو پالیسی ہے اس کو ٹو کرتے ہیں, اور تو اس لیے ہم جو ہے یہ نئی پارٹی لانا چاہتے ہیں. یہ گروپ آف ماڈریٹ ٹوریز تھا جو کہ بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ لاسٹ ایئر سے کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے یہ ایک چینج لے کر آنا چاہتے ہیں اور ایک لیڈرشپ جو ہے اس کا یہاں پہ ایک اور بھی فیس ہونا چاہیے. تو اب یہ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی ہی نیکسٹ ایئر میں ایک اپنا کنونشن ہولڈ کریں گے اور بہت سارے کینڈیڈیٹس سکاؤٹ کریں گے تاکہ ان کو نیکسٹ الیکشن میں لڑایا جا سکے. پریویسی کمشنر جو ہے جی فلپ ڈفرینس, انہوں نے اب ان کے سامنے ایک شکایت آئی تھی, تو انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا پوسٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے ایک پروب جو بٹھائی تھی اس نے باقاعدہ لا توڑا ہے بائی گیٹنگ انفارمیشن فرام آؤٹ سائڈ دا اینولپس اینڈ پیکجز جو یہ لوگوں کے گھروں میں پوسٹ ملتی ہے اس سے انہوں نے ایڈریسز اور نیمز اٹھائے ہیں اور وہ پوری کی پوری اس پہ ایک مارکیٹنگ لسٹ بلڈ کر کے جو ہے وہ بزنسز کو رینٹ پہ دی ہے. یہ بات انہوں نے اس وقت کی کہ جس وقت ایک آدمی جو تھا وہ اس نے بتایا کہ ایک ٹورنٹو کے ریسٹورانٹ سے اس کو کچھ مارکیٹنگ مٹیریل آیا تھا, تو وہ بڑی اس کو حیرت ہوئی کہ اس کے اوپر اس کا ایگزیکٹ نیم, اس کا ایڈریس, اس کے کانڈو کا اور اس کے فلیٹ کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. تو اس کو پتا چلا کہ جو پوسٹ آفس کے جو سمارٹ میل مارکیٹنگ پروگرام ہے اس نے یہ ارینج کیا تھا, میل جو کہ وہ کرتے ہیں کیمپین اس ریسٹورانٹ کے لیے اس کو دی تھی. تو آج اسی کے اوپر پرائیویسی کمشنر بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو کینیڈا پوسٹ نے کام کیا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, آپ کسی کی پرسنل انفارمیشن بغیر ان کی اجازت کے نہیں کسی کو دے سکتے ہیں, اینڈ ایز اے ریزلٹ اٹس اے وائلیشن آف سیکشن 5 آف پرائیویسی لا. اور جو جب کینیڈا پوسٹ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے ساتھ بالکل ڈس اگری کیا, انہوں نے کہا کہ جو ہے اس کے اوپر بھی بات نہیں کی کہ وہ کوئی کریکٹیو اس کے اوپر ایکشن لیں گے. بہرحال یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ اب پوری کی پوری, ابھی تو انہوں نے بات کی ہے فلپ صاحب نے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائم دس ویک, اب دس ویک رہ کتنا گیا, آج تو تھرسڈے ہو گیا ہے, میرے خیال میں کل تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری جو اینول رپورٹ آئے گی اس میں یہ جو انویسٹیگیشن کی فائنڈنگز ہیں وہ بھی میں پریزنٹ کر دوں گا پارلیمنٹ میں. تو اب دیکھیں گے اس کے اوپر پھر اور کیا ہوئے گا. اچھا جناب, آج الجزیرہ کی رپورٹ ہے اور ونڈز آف چینج جو ہیں وہ امریکہ میں بھی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ امریکہ میں بھی دو مین پارٹیز ہیں, ایک ریپبلکنز ہیں ایک ڈیموکریٹس ہیں, مڑ مڑ کے ان میں سے ایک نہ ایک آتا رہتا ہے. آج یہاں پہ جو ہے ایک ناول آیا تھا, آپ کو پتا ہی ہے لاسٹ الیکشن, اور اس کو لکھا تھا جو فارمر ڈیموکریٹک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھے اینڈریو یانگ. تو اینڈریو یانگ جو ہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں صرف ٹو پارٹی سسٹم ہے, یہاں پہ ہماری سوسائٹی جو ہے یہ اوور فلو کر رہی ہے گنز اینڈ ڈرگس سے, یہاں پہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ صرف جو ایکسٹریم فرنج ایلیمنٹس پارٹیز کے ہوتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں, اور ہمارا جو یو ایس ہے اس کے اندر ڈارک منی بہت زیادہ فلو کر رہی ہے جو کہ آتی ہے جو جس کے بارے میں جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کسی بلیئر نے دیا ہے. تو یہ جو سیکرٹ بلینئرز ہیں یہ کون ہیں, تو اس لیے ایک نان پارٹیزن پارٹی لانے کی ضرورت ہے, اور انہوں نے آج اس اپنی پارٹی کا نام کہا ہے فارورڈ, یعنی کہ ریپبلکنز اور جو ہے اور ڈیموکریٹس, اور اب یہ نئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آئے گی فارورڈ کے نام سے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو بار بار یہ جو سروے آ رہے ہیں اس میں لوگ نہیں چاہتے کہ 2024 میں پھر سے بائیڈن صاحب آئیں, چاہے جو کہ ری الیکشن اب سیک کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں چاہے اور کوئی بھی آئے پر وہ نہ آئے, لیکن اب ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے جو کہ ٹرمپ صاحب جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں اور تمام پولز میں ان کو فیور کیا جا رہا ہے, تو نہ تو وہ آئیں نہ یہ آئیں. تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ایک کریڈیبل تھرڈ پارٹی کے لیے جگہ بنتی ہے, تو میں جو ہے میں ڈیلیور کر سکتا ہوں, میری پارٹی ڈیلیور کرے گی فارورڈ. تو اس لیے اب آج انہوں نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا. اب اس کو کتنی پذیرائی ملے گی امریکہ میں وہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا, لیکن بہرحال اب انہوں نے تو جو سیٹ جو ہے وہ سو کر دیا تھرڈ پارٹی کا. دا کینیڈین کی آج, دا گارڈین کی آج یہ خبر ہے, اور یہ جو ہے اس نے آج دنیا میں کافی کھلبلی مچائی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے ابراہمز ایکارڈ کیا تھا عرب کنٹریز میں پیس لانے کے لیے, اور ان کو کہا تھا اسرائیل کے ساتھ دوستیاں بناؤ, تو وہ کافی حد تک جو تھا وہ سکسیسفل بھی ہوا تھا, لیکن سعودی عربیہ جو تھا وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی بنانے کو تیار نہیں تھا, اور اس نے کہا تھا کہ جی ہم جب تک پیلسٹائن کا مسئلہ حل نہیں ہوئے گا ہم نہیں کریں گے. گارڈین کی اس رپورٹ کے مطابق ایک پوٹینشیل نارملائزیشن ڈیل جو ہے اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہو سکتی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ جو پیلسٹائن ہے اس کا مدعا بھی شاید آئے گا کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے, مڈل ایسٹ کے اندر جو ہیں چیزیں کیسے رہنی چاہیے, یہ تمام باتیں جو ہیں یہ یو این جی اے کا جو سیشن چل رہا ہے نیو یارک میں اس کے سائڈ لائن پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے. ایک ریئر انٹرویو جو ہے محمد بن سلمان نے فاکس نیوز کو, کیونکہ وہ ویسٹرن میڈیا کو زیادہ انٹرویو نہیں دیتے ہیں, لیکن فاکس نیوز کو انہوں نے کہا کہ ہم قریب جا رہے ہیں, ایوری ڈے وی آر گیٹنگ کلوزر ٹو ورڈز نارملائزیشن آف ٹائز. تو لیکن انہوں نے کہا جی کہ پیلسٹائن کا ایشو جو ہے وہ بھی بے انتہا امپورٹنٹ ہے اور اس کا بھی سالو ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اگلے سال الیکشن میں جانے سے پہلے اپنی فارن پالیسی کی یہ اچیومنٹ جو ہے وہ لینا چاہتی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ بھئی ہم تھے وہ جنہوں نے کہ ریاض کی دوستی جو ہے وہ تل ابیب کے ساتھ کرائی, تو اس لیے جو ہے ہم کو پھر سے تم ووٹ دو, ہم اچھا اس ملک کے لیے کریں گے. تو اس کے اندر جو سعودی عربیہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک فارمل ڈیفینس پیکٹ جو ہے یو ایس اے سائن کرے اور ہمیں اسسٹنس دے ٹو ڈیولپ اے سویلین نیوکلیئر پروگرام, تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے. اور اسرائیل بھی یہ کہے کہ وہ ٹو نیشن تھیوری پہ بلیو کرتا ہے, ٹو سٹیٹ تھیوری پہ بلیو کرتا ہے اور پیلسٹائن سٹیٹ کو بھی کرے گا. اچھا اب اس میں اور ڈیٹیلز تو سامنے نہیں آئی ہیں کیونکہ یہ ساری جو سٹوریاں دا گارڈین کو یا دوسرے نیوز پیپرز کو پتہ چلی ہیں سورسز کے تھرو ملی ہیں, لیکن سنس 2020 جب سے یہ ٹرمپ صاحب نے بروکر کی تھی ڈیلز یو اے ای بارین موراکو اور سوڈان کے ساتھ ان کے اسرائیل کے ساتھ, تو اس وقت سے یہ بات چل رہی تھی کہ کی پلیئر جو ہے وہاں پہ سعودی عربیہ ہے اور وہ بھی اس میں ابراہم ایکارڈز کے فولڈ میں آنا چاہیے. اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں بنجمن نتن یاہو, آپ